घुमट सार जीव का सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनिंदवर नेमी चंद मक अलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के अंतर्गत ये कषाय प्ररूपणा यानी 14 मार्गणाओं में से कषाय मार्गणा और 20 प्ररूपणाओं में से 11वीं प्ररूपणा चल रही है, माने 11 नंबर का चैप्टर है ये खुला हुआ जो कषाय मार्गणा के नाम से है। हमने आपको कषाय का लक्षण बताया और कषाय तो सब लोग ही जानते हैं, आत्मानं कसति इति कषायः, तो जो आत्मा को अनादिकाल से संसार के अंदर बंधन में बांध कर रखती है उसे कहते हैं कषाय। तो आपने कषाय के 4 भेद जाने, क्रोध मान माया लोभ और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 भेद होते हैं। चारों कषाय 4-4 प्रकार की होती हैं, इसलिए कषाय के 16 भेद हो गए। अब आगे हम चलते हैं 90 नंबर की गाथा में, जो बता रही है गाथा कि शक्ति की अपेक्षा क्रोध के 4 भेद कौन से हैं। चारों कषायों को इस तरह बताएंगे तो आप स्वयं ही निर्णय कर सकेंगे कौन सी कषाय हमारे लिए करने योग्य है और कौन सी कषाय त्याग करने योग्य है। चलिए पढ़ते हैं। सिलपुड विभेद थूली धूली,
सिलपुड विभेद धूली,
सिलपुड विभेद धूली,
सिलपुड विभेद धूली,
जल राई समानो हमें को हो,
जल राई समानो हवे को हो,
नारय तिरिय नरामर,
नारय तिरिय नरामर,
गई सुपायो कमसो,
गई सु उपायो कमसो।
सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा।
सिलपुड विभेद धूली, जल राय समानो हवे को, नारय तिरिय नरामर, गई सु उपायो कमसो।
शिला पृथ्वी भेद धूली, जल राज समान को भवेत क्रोधः, नारक तिर्य नरामर गति सुत्पाद क्रमशः। बहुत सारी बातें इस एक गाथा के अंदर आचार्य देव ने कह दिया कि सबसे पहली कषाय है क्रोध। तो क्रोध कषाय 4 प्रकार से क्या बतलाती है, 4 प्रकार की उसकी शक्ति है। जानिएगा कि क्रोध 4 प्रकार का है। एक है पत्थर की रेखा के समान, एक है पृथ्वी की रेखा के समान, और तीसरा क्रोध है धूली की रेखा के समान, चौथा है जल की रेखा के समान। माने अनंतानुबंधी क्रोध जो 6 महीने से ऊपर जाता है और अनंत अनंत भव का बंधान कराने वाला है, वह क्रोध पत्थर की रेखा के समान होता है। माने पत्थर में कोई रेखा खींच दीजिए तो उसको मिटाना बहुत कठिन होता है, तो पत्थर की रेखा के समान क्रोध को कभी नहीं करना। और दूसरा क्रोध है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, उसको पृथ्वी की रेखा के समान कहा है, पृथ्वी पर भी रेखा खींचे तो बड़ी मुश्किल से मिटती है। ऐसा 6 महीने तक, 15 दिन के बाद 6 महीने तक जो क्रोध का काल रह जाता है, मन के अंदर क्रोध की अग्नि धधकती रहती है, उसको पृथ्वी की रेखा के समान अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के नाम से बताया गया है। तीसरी है धूली रेखा के समान, माने प्रत्याख्यानावरण कषाय, माने 15 दिन के अंदर अंदर जो कषाय रहती है उसके बाद खत्म हो जाती है, तो उसको धूली रेखा के समान, धूल में रेखा खींची फिर उसे जरा सा हाथ से ऐसे करेंगे मिट जाएगी, या वहां कोई चलेगा तो धूल पर वो रेखा खत्म हो जाएगी। ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति 15 दिन तक क्रोध करता है सामने वाले के प्रति, और फिर कुछ कुछ सोच करके और वह अपने सम्यक दर्शन के बल पर उस क्रोध को समाप्त करता है, यानी 15 दिन के बाद उस कषाय को समाप्त कर देता है। तो धूली की रेखा के समान, शक्ति वाली बताई। और चौथा जल की रेखा के समान, जल की रेखा क्या है, जल में यूं रेखा खींची तुरंत खत्म, ऐसी संज्वलन कषाय है, माने संज्वलन क्रोध, यानी आया तो जोर से क्रोध गुस्सा, लेकिन तुरंत एकदम मिच्छा में दुक्कड़म, मैंने क्रोध किया वो मेरा सब दुष्कृत मिथ्या हो जाए, इस प्रकार का क्रोध संतों को होता है। और वो क्रोध करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि किसी शिष्य को जोर से डांट दिया, अरे कहेंगे इतना क्रोध है महाराज को, तो वह क्रोध नहीं है, वह क्रोध शिष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए है, और तुरंत प्रतिक्रमण सामायिक आदि के द्वारा मिच्छा में दुकड़म कह करके वह क्रोध शांत हो जाता है। तो जल की रेखा के समान संज्वलन क्रोध होता है। तो अनंतानुबंधी, हाँ, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये चार प्रकार के क्रोध की बात बताई है, तो इनकी शक्तियां बताई हैं। और फिर कहा कि नारे तिरय नरामर गईस उपायो कमसु, आपको जानना है कि ये चारों प्रकार का क्रोध जो है क्रम से नरक में ले जाता है, और तिरंज गति में यानी अनंतानुबंधी क्रोध जिसके होता है वो नरक चला जाता है, अनंत अनंत बंध के बंधानुबंध करता रहता है, किसी के प्रति क्रोध की कषाय बांध ली फिर वो किसी तरह भूल ही नहीं पाता, तो इससे नरक जाते हैं। और अप्रत्याख्यानावरण कषाय तिर्यंच गति में ले जाता है, और प्रत्याख्यानावरण कषाय मनुष्य गति में, और संज्वलन कषाय से देव गति में जीव उत्पन्न होते हैं, यानी मुख्यता से बताया, और बाकी सभी लोग सब गतियों में भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, देव दुर्गति आदि में भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर से जो कषाय हमें दिखती हैं, उन अनंतानुबंधी आदि चारों कषायों के जो भेद बताए हैं, उनके स्वरूप और विषय को जो बताया है, ये इनकी शक्तियों को जानने के लिए आपको बताया है कि हमें अब इससे जान के हमें क्या करना है, हमें अनंतानुबंधी क्रोध को हमेशा के लिए छोड़ देना है, चाहे किसी प्रकार से कैसा ही क्रोध उत्पन्न होने का क्षण आ जाए, लेकिन तत्काल हमें भगवान पार्श्वनाथ का उदाहरण ध्यान देना है, हमें आचार्य शांति सागर महाराज का उदाहरण ध्यान देना है। अगर भगवान पार्श्वनाथ क्रोध के बदले में अपने क्रोध को ही प्रदर्शित करते तो कभी भी वो भगवान नहीं बन पाते, जैसे खून का कपड़ा खून से कभी भी साफ नहीं हो सकता, खून के कपड़े को साफ करने के लिए जल की ही आवश्यकता होती है, ऐसे क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा शांति की आवश्यकता होती है। कमट ने कितना क्रोध किया, अनंतानुबंधी क्रोध, वो 10 भाव तक दुर्गतियों में भ्रमण करता रहा, कष्ट भोगता रहा, और पार्श्वनाथ भगवान वो भी 10 भाव तक चले, लेकिन उन्होंने मनुष्य और देव की पर्यायों को प्राप्त किया और अंत में तीर्थंकर बन गए। अब आखिर क्रोध की कोई तो सीमा होती, उन्होंने अपनी क्षमा के, अपनी शांति और धैर्य के बल पर कमट के क्रोध को भी शांत कर दिया। क्या जहां बहुत शांति होती है वहां आप जाकर के देख ले तो क्रोधी व्यक्ति भी वहां जाकर के शांत हो जाता है, और शांत व्यक्ति भी क्रोधी के पास जाता है तो क्रोध में, क्रोध के परमाणु चूंकि वहां पर चारों तरफ फैले होते हैं तो वह भी बेचारा अशांत हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कहीं पर पति पत्नी के झगड़ा हो रहा है, बच्चा दौड़ करके वहां प्रेम पाने के लिए जाता है, और ये वहां तो आग बबूला देख करके दोनों को जल्दी जल्दी भाग जाता है कि अभी इनके क्रोध का शिकार मैं बन जाऊंगा, मुझे 2-4 थप्पड़ जरूर लग जाएंगे, यानी उस क्रोध की स्थिति में बच्चा भी उस जगह टिकना नहीं चाहता। और शांति के परमाणु में जहां संत तपस्या करते हैं वहां तिर्यंच भी जाकर के अपने क्रोध को, अपने हिंसक परिणामों को छोड़ करके शांत हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं जिनेंद्र भगवान के समोसरण में गाय और शेर एक घाट पानी पीते हैं, ये किसका उदाहरण है, यह है शांति का उदाहरण, क्षमा और धैर्य का उदाहरण, कि शेर जैसे क्रोधी और हिंसक प्राणी भी गाय के प्रति, गाय के बछड़े के प्रति शांति और मैत्री का भाव धारण कर लेते हैं, तब शेरनी भी गाय के बछड़े को दूध पिलाने लगती है और गाय का बछड़ा और गाय भी शेरनी के बच्चे को दूध पिलाने लगती है। यह है शांति का प्रभाव। तो इन चीजों को पढ़ने का हमारे लिए यही सबसे बड़ा सार्थकता है कि हम जब इन चीजों को पढ़ें तो हमें कसाय करना है कि नहीं, कौन सी कहां तक कसाय कर सकते हैं। वर्तमान में आप जो है सम्यक दृष्टि बने तो 6 महीने के ऊपर कसाय को कभी भी नहीं जाने दें, वरना कमट की तरह से वो अनंतानुबंधी बन करके और अपनी आत्मा के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए इसकी शक्ति को इन भेदों से उदाहरणों से बता दिया। शिला, पृथ्वी, धूली और जल में खींची गई रेखा के समान उत्तरोत्तर ये अल्प अल्प समय में मिट जाती हैं। उसी प्रकार से उत्कृष्ट आदि कसायों के विषय में समझना चाहिए कि वे अपने अपने योग्य आयु, गति, अनुपूर्वी आदि कर्मों के बंधन की योग्यता रखते हैं। तो आपको नरक में नहीं जाना है ना, तिर्यंच गति में भी नहीं जाना है, इसलिए अपनी कसाय को कम करना और अनंतानुबंधी कसाय कभी भी नहीं होने पाए यह ध्यान देना है। अब